बलदेव की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुनंद्र बलदेव की जय, श्री श्री गौरताई की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय, श्री श्री यशोदा दामोदर की जय, श्री श्री कार्तिक व्रत महामहोत्सव की जय, श्री तिब्बदान महामहोत्सव की जय, गौर प्रेमानंदी All glories to Simran devotees, all glories to Simran devotees, all glories to Simran devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. So, आज है ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत है, मध्यलीला अध्याय आठ है और पयार संख्या 289 से 291 तक. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. पयार संख्या 289 है. तोमर ठाई आमर किछु गुप्त नाही कर्म, लुकाइले प्रेम भले जान सर्वे मर्म. तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शुद्ध भक्त रामानंद राय के समक्ष स्वीकार किया, अब कोई ऐसा गुप्त कार्य नहीं है जो आपसे अज्ञात हो. यद्यपि मैं अपने कार्यों को गुप्त रखने की चेष्टा करता हूँ, फिर भी आप मेरे प्रति अपने उन्नत प्रेम के कारण प्रत्येक बात को विस्तार से समझ सकते हैं. तो भगवान अपने भक्तों को कितना सम्मान देते हैं और भगवान स्वयं कमजोर बन जाते हैं कि मैं बहुत कमजोर हूँ और तुम्हारी शक्ति ज़्यादा है. भगवान क्या कह रहे हैं, तुम्हार ठाई आमार किसी गुप्त नहीं करूं, तुम्हारे सामने मेरा कोई भी कार्य गुप्त नहीं है. लुकाइले लुकाइले मेरे, मैं तो छिपाने की कोशिश करता हूँ. प्रेम भले जान सर्व मर्म, तुम प्रेम के बल से सब कुछ मर्म तक जान लेते हो, मर्म तक जान लेते हो. मर्म का मतलब अंदर की बारीकी तक को जान लेते हो तुम, और मैं छिपाने की कोशिश करता हूँ. तो भगवान जो है कितने कमजोर हैं भक्ति के आगे, प्रेम के आगे, कि तुम प्रेम के बल से जो है तुम जो है इतने ज़्यादा सशक्त हो, समर्थ हो, और मैं असमर्थ हूँ. प्रेम के सामने मैं कितना असमर्थ हूँ, कितना कमजोर हूँ. भगवान जो है इस प्रकार से अपने भक्तों को जो है ऊपर उठाते हैं. भगवान जो है क्या कह रहे हैं, लुकाई ले, मैं तो छिपाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम जान लेते हो. किस बल से, प्रेम के बल से. और बिना प्रेम के, बिना भक्ति के कोई व्यक्ति कृष्ण को समझ नहीं सकता है. नमे विदुषुर गणा प्रभु नाम महर्षिः, देवता लोग भी नहीं मुझे जानते हैं, महर्षि लोग भी नहीं जानते. अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वेषां, समस्त देवताओं महर्षियों का मैं सब प्रकार से आदि कारण हूँ. तो एक तरफ जो है भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि उनको जो है कोई जान नहीं सकता है. प्रपद सीम ने अभिचिंत तत्व, अभिचिंत तत्व, तत्व अचिंत है. वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवाना, बहुत बड़े बड़े मुनि है ना, कोटि वत्सर है, करोड़ों वर्षों तक भी चलते रहे मन की गति से भी चले, तो भी प्रपद सीम ने अभिचिंत तत्व, उनके चरणों के अंगूठे को भी नहीं समझ पाएंगे. कृष्ण के तत्व समझने की बात तो बहुत दूर है, उनके चरण के अंगूठे को भी नहीं समझ सकते हैं. और करोड़ों वर्षों तक भी अगर वो चले मन की गति से, वायु की गति से चले, और कहाँ भक्तिया माम अभी जाना थी यावान ये तत्व, भक्ति से मुझे जानता है, मैं जो भी हूँ जैसा भी हूँ सत्व से जान लेता है. और यहाँ पर भगवान भी कह रहे हैं कि लुकाई ले, मैं तो छिपाने की कोशिश करता हूँ अपने को, मैं छिपने की कोशिश करता हूँ. इन प्रेम भले जान सर्व मर्म, इन प्रेम के बल से तुम जो है सब मर्म तक जान लेते हो मेरे. अंदर बाहर सब कुछ मेरा जो जो कुछ भी है तुम्हें पता हो जाता है, प्रेम के बल पर तुम्हें पता हो जाता है। तो वैसे तो भगवान जो है भक्तों के आगे भी अगर छिप जाए तो कोई नहीं जान सकता है, लेकिन रमण राय ने को जो है ये लगा, कुछ उनको संदेह हुआ, उनको संदेह हुआ, रमण राय को संदेह हुआ। क्या संदेह हुआ? कि आप मुझे अपना असली रूप मत छिपाइए। रमण राय ने कहा, क्या कहा था इसमें पहले की बात है, मैं देख रहा हूं आप मुख में बंसी धारण किए हैं, आपके नेत्र कमल, आपके नेत्र जो है चंचल हो रहे हैं, मैं आपको स्वरूप में देख रहा हूं, आप निष्कपट भाव से बताइए ऐसा क्यों हो रहा है, आप कपट छोड़ करके बताइए। तो श्री चैतन्य ने कहा कि आप में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है, इसलिए आप जो है उस प्रकार के भाव में। तो इस तरह से रामानंद राय ने फिर जब ज्यादा जोर दिया कि आप जो है बताइए और मैं जो है आपको जानना चाहता हूँ, तो उन्होंने जो है अपना दिखाया, अपना असली रूप दिखाया। रामानंद राय ने कहा अपना असली रूप मत छिपाइए। तो फिर जो है उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। तो असली रूप क्या है? राधा और कृष्ण का सम्मिलित रूप है ये। रामानंद राय मूर्छित हो गए। तो जब तक भगवान ना जनाए तब तक भक्त लोग भी नहीं जान सकते भगवान को, लेकिन फिर भी भगवान इस प्रकार से भक्तों को जो है अपने से बड़ा बताते हैं। तो भगवान की भाषा है। भगवान कहते हैं कि लोक आइए प्रेम बले जान सर्व मर्म, तो मैं तो छिपाने की कोशिश करता हूँ, प्रेम के बल से तुम सब मर्म जान लेते हो। गुप्ते राखी कहाना करियो पर काशे, आमार बातुल चेष्टा लोके उपहास। तब महाप्रभु ने रामानंद राय से अनुरोध किया, इन सारी बातों को गुप्त रखें, आप इन्हें कहीं भी प्रकट न करें, क्योंकि मेरे कार्य उन्मत्त व्यक्ति जैसे प्रतीत होते हैं, अतः लोग उनकी गंभीरता न समझते हुए हंसी बनाएंगे। क्या कह रहे हैं? गुप्ते राखी है। अब आप तो जान गए हैं, प्रेम के बल से जान गए हैं, लेकिन अब मैं ही आप से अनुरोध कर रहा हूं कि इसको गुप्त रखो, आप चाहो तो बता सकते हो, मैं क्या करूं। भगवान जो है इतने विवश हैं कि उनसे आप कह रहे हैं कि आप तो जान गए प्रेम के बल से, और कोई तो नहीं जान सकता, लेकिन आप अगर बताओगे तो कोई जान लेगा, लेकिन ना बताओ। गुप्ते राखी है, कहां ना करियो प्रकाश, कहीं भी प्रकाश नहीं करना। हमारे बात वह चेष्टा लोके उपहास, कि हमारी जो चेष्टा है वो पागल की तरह है और लोग जो है वो उपहास करेंगे। तो तत्व जो है, अगर मेरा तत्व भी तुम बताओगे किसी को तो लोग तत्व नहीं समझेंगे, लोग उपहास ही करेंगे और मुझे पागल ही समझेंगे। तो अच्छा है कि नाम बताओ। अब 291 संख्या के प्यार है मेरे पीछे बोले, आमी एक बात बोल तुम्हें द्वितीय बात बोल, अत एक तो माय अमाय हाई साम तुल, आमी एक बात बोल तुम्हें द्वितीय बात बोल, अत एक तो माय अमाय हाई साम तुल, आमी एक बातुल तुम्हें द्वितीय बातुल, अतएव तुम्हें अमाय हाई समय तुल। और वैष्णो देवी शब्दार्थ बोलिए आमी मैं एक एक बातुल उन्मत्त आदमी तुमी आप द्वितीय दूसरे बातुल उन्मत्त आदमी अतएव अतएव तुमाय आप आमाय मैं हई हैं समतुल समान स्तर पर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तब कहा मैं सचमुच उन्मत्त व्यक्ति हूं और आप भी उन्मत्त हो, अतएव हम दोनों समान धरातल पर हैं। तो भगवान रामायण राय से जो बोल रहे हैं वो किन की दृष्टि बोल रहे हैं? संसार की दृष्टि, संसार की दृष्टि में, है ना? मतलब किसी को नहीं बताना, ये बातें नहीं बताना क्योंकि हंसेंगे, इसका मर्म नहीं समझ सकते, तो आपके बताने से वो मर्म नहीं समझ सकते, इसलिए अच्छा कि ना बताओ। बिना भक्ति कोई जान नहीं सकता इस रहस्य को, तो वे भक्त नहीं है, और आप अगर बताएंगे तो समझेंगे नहीं, तो वे उल्टा बोलेंगे, तो उनकी नजरों में आमी एक बातुल, मैं एक बातुल हूं, पागल हूं, मैं एक पागल हूं, तुम्हें द्वितीय बातुल और तुम दूसरे पागल हो। तो संसार में केवल दो ही पागल हैं, एक मैं हूं एक दूसरे तुम हो, दो ही पागल है, अतः तो मैं आमाय है समतुल, इसलिए हम और तुम जो है दोनों बराबर हैं। तो हम लोग बातें कर सकते हैं, हम लोग इसलिए एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, लेकिन और किसी को नहीं बताना, है ना? तो ये बातें हैं केवल साढ़े तीन व्यक्तियों से भगवान करते थे, श्री चैतन्य केवल साढ़े तीन व्यक्तियों से करते थे, उनमें से एक रामानंद राय है ना, और दूसरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, और तीसरे सिखी माहिती, है ना, और आधा उनकी बहन माधवी, सिखी माहिती की बहन माधवी, स्त्री होने के कारण वो आधा है। तो केवल साढ़े तीन व्यक्तियों के साथ में ये बातें श्री चैतन्य करते हैं, लेकिन जहां तक हरिनाम की बात है तो संकीर्तन के पितृ, संकीर्तन आंदोलन के दो पिता हैं, तो संकीर्तन जो है पूरे संसार में फैलाया, उनका जो अवतार है तो बाहरी कारण, उनके अवतार का जो बाहरी कारण है वो संकीर्तन आंदोलन को प्रारंभ करना है। कलौ संकीर्तन आरंभे भविष्यामि सचि सुता, तो कलयुग में संकीर्तन का आरंभ करने के लिए मैं सचि पुत्र बनूंगा, तो उसमें जो है कोई छिपाव नहीं है, सबको बताना है, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, तो कृष्ण का उपदेश करो, सबको कहो। लेकिन जहां तक जो माधुर्य भाव की बात है, गोपी भाव की चर्चा है, ये चर्चा सबके साथ नहीं करना, ये जो है मतलब विशेष बातें हैं जो श्री चैतन्य का आंतरिक कारण, उनके अवतार का जो आंतरिक कारण है वो इस भाव का आस्वादन करने के लिए, तो इसमें रामानंद राय की सहायता वो लेते हैं, स्वरूप दामोदर की सहायता लेते हैं, और इस प्रकार से साढ़े तीन लोगों की सहायता से वे इस माधुर्य भाव का आस्वादन करते हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की। रामानंद राय तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की ये वार्ताएं एक सामान्य व्यक्ति जो भक्त नहीं है उसे हास्यास्पद प्रतीत होती हैं। सारा जगत भौतिक विचारधाराओं से भरा है, तो हास्यास्पद, यहां प्रभुपाद कहते हैं हास्यास्पद, हंसी की बातें होंगी, या तो उसको हंसी में उड़ा देंगे, और नहीं तो अगर गंभीरता से लेंगे तो वे जो है इन लीलाओं की नकल करेंगे, तो उससे भी होगा जो है पता नहीं। तो या तो इन लीलाओं को जो है वे गंभीरता से लेंगे और नकल करेंगे तो उनका पतन है, और अगर वे जो है शास्त्र के विरुद्ध इन बातों को मानेंगे कि स्त्री पुरुष की जो है ये संबंध ये समान मान करके और इनकी निंदा करेंगे तो उसमें भी अपराध है। तो दोनों प्रकार से नुकसान है। राधा कृष्ण की जो दिव्य लीलाएं हैं इनको सामान्य स्त्री पुरुष का संबंध मान करके और इसमें जो है दोष निकाल करके भी ये जो है विवाह के अलावा जो है संबंध स्त्री पुरुष के हैं तो ये मान करके निंदा करेंगे तो इसमें भी जो है बड़ा दोष होगा, उनको बड़ा दोष लगेगा। और अगर वे जो है इनको जो है गंभीरता से लेंगे कि ये जो है प्रशंसा की बात है और इस तरह के रास्ते में अगर वो चलेंगे तो समाज में जो है बहुत उत्पात मचेगा। जैसे सहजिया लोग हैं तो वे निंदा नहीं करते राधा कृष्ण के और गोपियों के जो संबंध है उनकी निंदा नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं नकल करते हैं और वे भी जो है इस प्रकार से व्यभिचार करते हैं, नकल करके तो अपना जो है सर्वनाश करते हैं। तो इस तरह से भी जो है अपना सर्वनाश है। कोई व्यक्ति निंदा करता है कि हमें इस रास्ते नहीं चलना है तो ये गलत रास्ता है, ये गलत इनके जो है आचरण है, तो इस तरह से भी जो है उनका सर्वनाश है। दोनों प्रकार से सर्वनाश है। वे नहीं समझ पाएंगे कि राधा कृष्ण के और गोपियों के जो संबंध है वो कितने दिव्य हैं और हम नकल नहीं कर सकते, हमें केवल उनके बारे में सुनना है और उनकी उनका गुणगान करना है। तो ये जो है स्थिति केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, तो श्री चैतन्य जो है मना कर रहे हैं, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, सारा जगत भौतिक विचारधाराओं से भरा है और लोग इन वार्ताओं को संसारी दर्शन द्वारा बद्ध होने के कारण समझने में असमर्थ हैं। जो लोग संसारी कार्यों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं वे रामानंद राय तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच की इन भावपूर्ण वार्ताओं को नहीं समझ सकेंगे, तो इन बातों को नहीं समझ सकेंगे। इसलिए प्रभुपाद ने पूरे संसार में जो आंदोलन शुरू किया है तो किस बात पर जो है यह आंदोलन शुरू किया है कि हम ये शरीर नहीं है, इस जीवन के बाद अगला जीवन है, किस बात को समझना है, हम ये शरीर नहीं है, इस जीवन के बाद अगला जीवन है, और इस बात को लेकर के प्रभुपाद जो है हमेशा बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं इस बात को लेकर के, और एक प्रवचन नहीं, दूसरा प्रवचन, तीसरा प्रवचन, चौथा प्रवचन, प्रवचन के बाद प्रवचन, प्रवचन के बाद प्रवचन, इसी बात को लेते हैं प्रभु। श्रीमद् भागवत के किसी भी श्लोक में ये विषय आ जाता है तो प्रभुपाद उसको जो है लंबा करते हैं हमेशा। तात्पर्य भी भगवद गीता के, श्रीमद् भागवत के, कहीं भी जब ये विषय आता है शरीर और जीव के बीच में अंतर, तो इस बात को लेकर के प्रभुपाद जो है थकते नहीं है, तात्पर्य एक के तात्पर्य में दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, भगवद्गीता भी इन श्लोकों में शुरू के जो भगवान की उपदेश हैं तो उनमें वही बात दोहराई भगवान ने। तो प्रभुपाद भी जो है इतना तात्पर्य देते हैं, एक भी श्लोक नहीं छोड़ते, एक भी श्लोक नहीं छोड़ते। श्रीमद् भागवत में भी आप देखेंगे जहां ये विषय आता है तो प्रभुपाद छोड़ते नहीं, तात्पर्य देते हैं और जो है छोटे तात्पर्य नहीं, लंबे तात्पर्य देते हैं। तो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है ये पतितों का जो है उद्धार करने के लिए, तो हमारा वो विषय नहीं होता कि कृष्ण कौन है और कृष्ण जो है कि क्या संबंध है गोपियों के साथ, ये हमारा जो है विषय नहीं होता। कोई व्यक्ति कृष्ण को लेकर के मेरे सामने भी कुछ चर्चा कर रहा था, उल्टी बातें बोल रहा था, वो एमपी था, तो हम उसके ऑफिस में गए थे, है ना, तो हमने उसको कहा कि हरे कृष्ण का जाप करिए, तो वो कृष्ण की जो है मतलब बात करने लगा कि कृष्ण का ऐसा है चरित्र, ये है वो है, तो हमने कहा कि नहीं हमारा ये विषय नहीं है, हम आपको कृष्ण का नाम नहीं बता रहे, हम तो मंत्र बता रहे हैं। हमने कहा ये कृष्ण का नाम नहीं हम बता रहे हैं, हम कृष्ण की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, हम तो ये मंत्र बता रहे हैं, ये मंत्र आपको जो है बोलना है, इसी को सुनना है, इससे आपकी चेतना शुद्ध होगी। यही बताना पड़ता है, ये नाम हम नहीं बता रहे हैं आप, हम कृष्ण का नाम नहीं बता रहे हैं, हम तो मंत्र बता रहे हैं, मंत्र को जो है आप बोलिए, इसी से जो है आपकी जो चेतना है वो शुद्ध होगी, आप समझ पाएंगे, अगर जीवन है आप समझ पाएंगे, आप शरीर नहीं है, शरीर के अंदर अविनाशी आत्मा है, इसको आप समझ पाएंगे, तब उसका जो है बहस करना बंद हुआ, नहीं तो हमसे बहस कर रहा था। तो इस तरह से जो है लोगों को जो है शुद्ध करने के लिए और जितना वो समझ सकें और समझाने के लिए हमें ये जो विषय है वो छोड़ना पड़ता है, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जो लोग संसारी कार्यों में का अत्यधिक लिप्त रहते हैं, वे रमण राय तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच की इन भावपूर्ण वार्ताओं को नहीं समझ सकेंगे, इसीलिए महाप्रभु ने रमण राय से अनुरोध किया कि वे सारी वार्ताओं को गुप्त रखें और उन्हें सामान्य जनता के सामने प्रकट न करें। जो वास्तव में कृष्ण भावनामृत में उन्नत होता है वही इन गुप्त बातों को समझ सकता है, अन्यथा ये विक्षिप्त प्रतीत होंगी। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामन राय को बताया कि वे दोनों ही बातुल उन्मत्त लगते हैं और एक ही धरातल पर, इसकी पुष्टि भगवद गीता 2:69 द्वारा भी होती है, यानी सा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानी सानिसा पश्यतो मने। जो समस्त जीवों के लिए रात है वो संयमी व्यक्तियों के लिए जगने का समय है, और जो समस्त जीवों के लिए जगने का समय है वो अंतरदर्शी मुनियों के लिए रात है। कभी कभी संसारी व्यक्तियों को कृष्ण भावनामृत एक प्रकार का पागलपन जैसा प्रतीत होता है, जिस तरह संसारी व्यक्तियों के कार्य कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वारा पागलपन का एक रूप समझे जाते हैं। तो हमारे लिए वो पागल हैं, उनके लिए हम पागल हैं। तो इसको जो है इस श्लोक पर श्री भगवान ने कहा, मैं काफी चर्चा हुई है तो उसमें से कुछ बातें मैं पढ़ के सुनाऊंगा। प्रभुपाल एक प्रवचन दे रहे हैं, उसमें कह रहे हैं, अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने समस्त प्रकार के भौतिक भोगों को त्याग दिया है तथा वो श्री कृष्ण की दिव्य आध्यात्मिक सेवा में लग गया है, तो भौतिकतावादी लोग देखते हैं तथा कहते हैं एक कैसा बेकार का व्यक्ति है कि इसने सभी प्रकार के भौतिक भोगों को त्याग दिया है। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए कृष्ण भावना भावित जीवन रात्रि के अंधकार के समान प्रतीत होता है। विदेशों में लोग जब ये देखते हैं कि हरे कृष्ण भक्तगण किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं करते हैं और न ही वे मांसाहार करते हैं, तो वे सोचते हैं कि इन लोगों के जीवन में कोई सुख नहीं है। दिन के प्रकाश में व्यक्ति को अनेक प्रकार के रूप रंग दिखाई पड़ते हैं तथा वो विविध प्रकार के आमोद प्रमोद में अपना मन बहलाता है, परंतु रात्रि के अंधकार में उसे काले अंधकार के सेवा और कोई भी रूप रंग नहीं दिखाई पड़ता है और न ही उसे किसी भी प्रकार के आमोद प्रमोद का लाभ मिलता है। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि भौतिकतावादियों के लिए इंद्रिय तृप्ति का जीवन दिन के प्रकाश के समान है तथा कृष्ण भावना भावित जीवन रात्रि के अंधकार के समान है। जिस समय रूस में हरे कृष्ण आंदोलन फैल रहा था, उस समय रूसी सरकार ने देखा कि हरे कृष्ण भक्तगण ना तो शराबी पीते हैं और ना ही मांस खाते हैं। ये लोग तो केवल हरे कृष्ण का कीर्तन ही करते रहते हैं। तो रूसी सरकार ने हरे कृष्ण भक्तों के इस कार्य को कानूनी अपराध माना। रूसी सरकार का कहना था कि हरे कृष्ण भक्तगण शराब और मांस का सेवन ना करके अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं और हरे कृष्ण के कीर्तन के द्वारा अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। रूसी सरकार का यह विचार था कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए शराब पीना और मांस खाना अत्यंत आवश्यक है तथा हरे कृष्ण मंत्र की एक ही ध्वनि यदि बार बार सुनी जाए, कोई भी शब्द एक बार 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 सुनते हो है? कोई भी शब्द को बार बार सुनते हो तो दिमाग के लिए बहुत घातक है। उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि रात्रि के अंधकार के समान है। गीता के अंत में भगवान ने कहा है जो लोग तपस्वी और भक्त नहीं है उन्हें गीता का संदेश ना दिया जाए, क्योंकि यहां पर भगवान कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों के लिए आध्यात्मिक चर्चा अंधकार के समान नीरस है। यदि ऐसे लोगों को श्री कृष्ण का संदेश बतलाया जाएगा तो वे इस संदेश का आदर नहीं करेंगे। वे सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति का जीवन दिन के प्रकाश के समान है और इंद्रिय तृप्ति का त्याग करके श्री कृष्ण की शरण लेना रात्रि के अंधकार के समान है। जब श्रीवास पंडित के घर में कीर्तन होता था, संकीर्तन आंदोलन के प्रारंभिक दिनों में भगवान चैतन्य श्रीवास पंडित के घर में रात्रि भर कीर्तन किया करते थे। भौतिकतावादी व्यक्तियों के लिए ये रात्रि का समय सोने के लिए था, परंतु भक्तों के लिए आनंद का समय था। संध्या होते ही सब भक्त थोड़े थोड़े करके श्रीवास के घर में आ मिलते थे। उस समय मुकुंद महाशय भक्तियोग सम्मत श्लोकों को पढ़ने लगते थे। पुण्यवान मुकुंद का ऐसा दिव्य कंठ स्वर था कि उसे सुनते ही भगवान चैतन्य में भावावेश हो आता था और वे हरि बोल कहकर गर्जने लगते थे और चारों ओर गिरने लगते थे। कोई भी उनको पकड़कर रख नहीं पाता था। भय हास कंप पसीना पुलक गर्जन आदि सब भाव एक साथ ही प्रभु में प्रकट हो जाते थे। यह पूर्व दृश्य देखकर भक्तजन आनंद में गाने लगते थे। इधर प्रभु का प्रेम भाव शांत नहीं होता था। सारी रात एक मुहूर्त अर्थात 48 मिनट की तरह बीत जाती थी। पूरी रात एक मुहूर्त यानी 48 मिनट की तरह बीत जाती थी। प्रभात काल में जैसे जैसे प्रभु बाहरी दशा में आते थे, इस प्रकार श्री चैतन्य रात भर निरंतर कीर्तन करते थे। महाप्रभु के कीर्तन महाप्रभु ने कीर्तन का प्रकाश आरंभ कर दिया, जिसे देखकर भक्तों के दुख नष्ट होने लगे। श्री सचिदानंदन बार बार हरि बोल कहकर पुकारते, जिससे पाखंडियों की निद्रा भंग हो जाती और उनका जागरण होने लगता। निद्रा सुख भंग होने से भयमुख लोगों को क्रोध होता और जिसके मन में जो आता वही बकने लगता था। कोई कहता क्या इन लोगों की वायु बिगड़ गई है, कोई कहता था क्या करें इनके मारे रात में सो नहीं पाते हैं, कोई कहता था इनके जोर से पुकारने से भगवान नाराज हो जाएंगे, इस कर्म से इन लोगों का सर्वनाश हो जाएगा, कोई कहता था ज्ञान योग का विचार छोड़कर इन लोगों ने बिल्कुल उद्दंड चाल पकड़ ली है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस श्लोक की शिक्षा भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन के साथ अत्यंत मेल खा रही है। जिस प्रकार इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि भौतिकतावादियों के लिए जो रात्रि है उसमें संयमी व्यक्ति जागते हैं, उसी प्रकार सामान्य व्यक्तियों के लिए जो रात्रि का समय सोने के लिए था उस रात्रि में भगवान चैतन्य तथा उनके भक्तगण संकीर्तन का आनंद लेते थे। श्री चैतन्य के चरित्र में खोल बेचर श्रीधर का चरित्र भी अत्यंत दिव्य है। श्री कृष्ण का नाम लेते ही हुए इन्हें रात्रि के चार प्रहर नींद नहीं आती थी। वे सारी रात हरी हरी की ऊंची टेर लगाते थे। पाखंडी निंदक लोग कहते थे कि श्रीधर की चिल्लाहट के मारे हम रात भर सो नहीं पाते हैं और हमारे दोनों कान फटे जाते हैं। गंवार उल्लू कहीं कहा भात से पेट भरता नहीं, इसी से भूख से जागरूक होकर वो रात भर जाग जाग कर मरता है। इस प्रकार पाखंडी लोग गाली दे देकर जलते मरते थे, परंतु श्रीधर मस्त होकर रात्रि भर कीर्तन करते रहते थे। तो इस तरह से बहुत सी बातें हैं इस व्याख्या में। तो आज के जो प्यार है इसमें श्री चैतन्य ये बता रहे हैं, गीता में भगवान कहते हैं अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियतम च यत् स्वाध्याय भस्म च वाङ्मयम् तपोचति, कि ऐसा वाक्य बोलना है जो उद्वेग पैदा ना करे। तो सबसे पहले तो उद्वेग पैदा ना करे, यानी कि सत्य है? सत्य बोलना ही है, हमेशा सत्य बोलना है, ऐसा नहीं है, सत्य बोलना है, लेकिन पहले आवश्यकता क्या है कि उद्वेग पैदा ना करे, अनुद्वेग कर्म मार्ग में, फिर सत्य भी हो। फिर दूसरी आवश्यकता है सत्य की, लेकिन पहली आवश्यकता क्या है, उद्वेग पैदा नहीं, सत्य है लेकिन आपको बोलना है, किस तरह बोलना है, क्या बोलना है, वो आपको विचार करना चाहिए। सत्यम, इसके बाद प्रिय, सत्य भी हो लेकिन फिर प्रिय भी लगे, आपको इस तरह से बोलना है कि वो प्रिय भी लगे। सत्यम प्रिय हितम, इसके बाद हितकारी भी, ये नहीं सत्य बोल रहे हैं प्रिय बोल रहे हैं लेकिन हितकारी नहीं, तो वो नहीं। जैसे कि न्यूज़पेपर, जो आजकल के समाचार पत्र हैं, तो उनमें सत्य समाचार होते हैं, सत्य घटनाएं होती है ना, लेकिन वो हितकारी नहीं होती हैं घटनाएं, उन घटनाओं को पढ़ करके सुन करके लोगों की जो भावना है वो दूषित होती है। जैसे बलात्कार के घटनाएं समाचार पत्र में मिलती हैं, उनको पढ़कर के लोगों के दिमाग में क्या है, वो दोष पैदा होता है और ज्यादा होते हैं बलात्कार। हालांकि वो निंदा के भाव में वो बलात्कार की घटनाएं वो मतलब आती हैं समाचार पत्र में, कोई प्रशंसा के भाव में नहीं आती, निंदा के भाव में आती हैं, लेकिन उससे भी जो है लोगों की जो चेतना है वो दूषित होती है। तो इसलिए कोई भी बात हो, सत्य भी हो और प्रिय भी हो, लोगों को तो अच्छा लगता है समाचार पत्र में ऐसी घटनाएं। बलात्कार है और हिंसा, हत्या, हत्या की भी घटनाएं, तो ये घटनाएं मतलब सत्य घटनाएं होती हैं और लोगों को जो है अच्छा मसाला भी मिलता है पढ़ने सुनने में, लेकिन वो हितकारी नहीं है। विदेशों में जो है बच्चे भी इन समाचारों को सुन करके या देख करके टीवी में, वो भी शिक्षक को जो है गोली मारते हैं बच्चे भी। तो जो बलात्कार है और हिंसा है, ये जो घटनाएं हैं समाचार पत्रों में या मीडिया में जो आती हैं, तो ये जो है सत्य हैं और प्रिय हैं लेकिन हितकारी नहीं है। अनुद्वेग करनी भी है, उद्वेग नहीं पैदा होता है, तो वो जो है मनोरंजन के लिए सब सुनते हैं देखते हैं ना, तो सब कुछ है, उद्वेग नहीं पैदा हो रहा है और सत्य भी है प्रिय भी लेकिन हितकारी नहीं है। तो इसलिए सब चारों चीजों को जो है ध्यान में रख करके जब आप बोलते हैं तो वांग्मयम् तप उच्यते, तब वाणी की तपस्या होती है, तब वाणी की तपस्या होती है ना। तो इस तरह से जो है भगवान सामान्य रूप में बताते हैं, लेकिन फिर प्रभुपाद कहते हैं कि जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को कठोर वचन बोलते हैं और उनके अज्ञान को काटते हैं। तो गुरु का काम है, साधु का काम है अज्ञान को काटना। जैसे तेज धार वाली चाकू से कोई व्यक्ति जो है आसानी से किसी मोटे आवरण को काटता है, उसी प्रकार से साधु के जो वचन होते हैं वो तेज धार वाली चाकू की तरह होते हैं और लोगों के अज्ञान को काटता है, साधु अज्ञान को काटता है। तो दोनों बातें, हमें जो है कठोर बात बोलनी पड़ती है, लेकिन जब कठोर बात बोलनी पड़ती है तो उसके लिए हमें तैयारी करनी होती है। सबसे पहली बात, हम जो है अपने को साधु दिखाते हैं कि हम कैसे, हमारा यही काम है, अगर हमारा यही काम है तो आप सुनोगे तो आप पहले से समझ लो कि हमारा काम क्या है, हम आपके अज्ञान को काट रहे हैं, अज्ञान को दूर कर रहे हैं, तो आप तैयार हो जाइए, तो उद्वेग नहीं पैदा होगा। तो जब साधु कुछ बोलता है तो लोग सामान्य जनता जो है आदर करती है कि भाई ये तो बोलेंगे, इनका काम है उपदेश देना, और हम अगर गलत रास्ते में चल रहे तो हमें बताते हैं, तो इनका तो काम ही है। तो साधु और गुरु का ये काम है। तो जो शिष्य होता है तो वो तैयार रहता है, गुरु कुछ कठोर बोले तो उसको समझना है, मानना है, स्वीकार करना है, तो द्वेष नहीं पैदा होता। तो इसलिए आंदोलन कहा गया, ये हरे कृष्ण आंदोलन है। आंदोलन का भी मतलब ये, आंदोलन का मतलब ये है कि इसमें गति होगी। आपको जो है अगर नींद आ रही बहुत जोर से, घर में आग लगी है, तो दूसरा व्यक्ति जो है आपको जगा रहा है और डांट रहा है कि जागो, भागो, उठो भागो, उठो भागो, है ना, तो क्या गलत कर रहा है? ये आंदोलन है। तो आंदोलन का नाम ही दिया गया, मूवमेंट के नाम दिया, हरे कृष्ण मूवमेंट। तो इससे ही जो है लोग समझ जाते हैं कि भाई ये मूवमेंट है, ये आंदोलन है। तो हमको जो है अगर जगाया जाए और डांटा जाए तो हमें तैयार रहना है। और कोई जो है ऐसी इमरजेंसी है कि हमें बताया जा रहा है कि ये समाचार जो है कुछ बहुत ही अप्रिय है और हमें जो है इससे सावधान होना है, हमें सावधान किया जा रहा है, तो इस प्रकार का वातावरण जो है हमें बनाने की आवश्यकता है ना। जब भक्त लोग जो है वैष्णव वेशभूषा में होते हैं, उनकी शिखा है, तिलक है, ये सब चिन्ह होते हैं वैष्णवों के, तो जो सामान्य व्यक्ति है वो जब देखता है तो उसकी चित्त वृत्ति शुद्ध होती है, तो वो जो है विषय भोगों से वो हट करके उसका भी जो है उसका भी श्रद्धा पैदा होती है कि भाई इनका जीवन कुछ अलग ही है, और अगर मैं इनका संग करूं तो ये मुझे कुछ अलग ही प्रकार की बातें बताएंगे, तो वो जो है सुनने के लिए तैयार हो जाता है। अपने घर में अपना ही लड़का है अगर उपदेश देता है तो माता पिता को बुरा लगता है, ये क्या बता रहे हैं, कल का बच्चा मुझे सिखा रहा है, हमारे सामने पैदा हुआ हमें सिखा रहा है। श्री चैतन्य ने संन्यास लिया, श्री चैतन्य ने संन्यास लिया इसलिए संन्यास लिया कि लोग जो है सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। सन्यासी के रूप में कुछ बोलेंगे तो वो जो है प्रत्युत्तर नहीं देंगे, बहस नहीं करेंगे, भाई महाराज कह रहे हैं तो फिर ठीक। तो प्रभुपाद के गुरु भाई ने भी कहा कि प्रचार करना है तो सन्यास लेना पड़ेगा। तो सन्यासी है, विरक्त है, तो वो कुछ बोल रहा है तो फिर लोग सोचते भी इनको तो अधिकार है बोलने का। और वृद्धावस्था भी जो है प्रभुपाद का एक जो है बहुत बड़ा बल था, बूढ़ा व्यक्ति कुछ बोलता है तो सोचते भी बड़ी उम्र के हैं बोल रहे हैं तो ठीक है सुन लो। तो ये सब जो है ये बल था, प्रभुपाद की वृद्धावस्था भी उनका एक बल था, प्रचार के लिए बहुत बल मिलता है इससे भी। तो इस तरह की बातें हैं कुछ है जो कि विचार करने की हैं। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है? हाँ जी, हाँ इनका अच्छा प्रश्न है। पहले तो आता है उद्वेग, उद्वेग हाँ, तो उद्वेग तो पैदा नहीं हुआ लेकिन फिर अप्रिय लगता है। कभी कभी जो है आपने कोई बात बोली किसी को तो उससे उसको उद्वेग तो नहीं हुआ लेकिन अप्रिय लगा। आपने उसको इस तरह से बोला कि वो जो है उद्वेग तो नहीं हो रहा है, आपने कुछ बोला अच्छे तरीके से बोला लेकिन बात बहुत अप्रिय लगी। जैसे श्री राम ने जो है जब सीता जी से बात कही थी तो इस तरह से बात कही थी कि उनको उद्वेग ना हो, देवी मैंने जो है अपने वंश के गौरव के लिए, अपने वंश की इज्जत के लिए, सम्मान के लिए मैंने जो है रावण का वध किया है, रावण का वध किया है, ये युद्ध मैंने किया, ये सब मतलब भगवान बोले। लेकिन फिर ये बोले लेकिन मैंने तो तुम्हें प्राप्त करने के लिए नहीं, ये जो युद्ध किया है मैंने तुम्हें प्राप्त करने के लिए नहीं किया है, मुझे तुम्हारे चरित्र में संदेह। तो क्या हुआ, उद्वेग तो नहीं हुआ सीता जी को, क्योंकि शुरुआत जो की उस तरह से की जो सामान्य बातें होती हैं और जो स्वीकार करने वाली बातें होती हैं, तो वो शुरुआत में आपने जब बोला तो उद्विग्न होता है और वो मानता है कि हाँ ठीक बोल रहे हैं, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और फिर बाद में कुछ बात बोली, कैसा लगा? बहुत अप्रिय लगा। फिर अग्नि देवता जो है जब सीता जी को प्रमाणित करते हैं कि ये शुद्ध हैं, और जो है सबके सामने प्रमाणित करते हैं कि सीता जी जो है मन वचन और शरीर हर प्रकार से बिल्कुल पवित्र हैं, तो मैंने स्वीकार करो। तो श्री राम मनुष्य की मनुष्य का अभिनय कर रहे हैं, तो अग्नि देवता जो है बड़े अधिकारी के रूप में राम को जो है आदेश दे रहे हैं कि अब मेरी आज्ञा है कि आप सीता को कोई अप्रिय वचन नहीं बोलना, सीता को कोई अप्रिय वचन नहीं बोलना आगे से। तो आपने अप्रिय वचन बोले सीता जी को, आगे कभी सीता को अप्रिय वचन नहीं बोलना, है ना। तो श्री राम ने आगे चल करके फिर क्या हुआ, सीता का त्याग तो किया या सीता को कुछ बताया नहीं, लक्ष्मण को आज्ञा दी कि तुम जो है सीता जी को वन में छोड़ दिया हो, और लक्ष्मण जी ने फिर राम की आज्ञा बताई, तो सीधे राम ने सीता को अप्रिय वचन नहीं बोले। फिर भी अप्रिय व्यवहार तो किया, राम का जो व्यवहार था और सीता के प्रति बहुत अप्रिय था, लेकिन अप्रिय बात नहीं बोली, वो वचन का पालन किया, उस तरह से वचन का पालन किया। तो ये इस तरह की बातें हैं। और रुक्मिणी देवी भी वही सीता जी हैं, तो जब श्री कृष्ण जो है बोलते हैं कि देवी तुम, तुम्हारे गुण तो बहुत उत्तम हैं, तुम स्त्रियों में बहुत श्रेष्ठ हो, सब कुछ बता रहे हैं रुक्मिणी को, और फिर कहते हैं कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। फिर कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, अच्छा है तुमको जो है बहुत पुरुष हैं जो तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारे से अच्छा अच्छी प्रकार से जो है सेवा करेंगे तुम्हारी, है तो तुम चले जाओ उनके पास। तो रुक्मिणी को जो है फिर बहुत डर लगा, बहुत भयभीत हुई रुक्मिणी जी कि जैसे पहले त्याग किया था मेरा त्याग करना चाहते हैं, तो रुक्मिणी जी बहुत डर गई। तो कृष्ण भी जो है मतलब रुक्मिणी से अप्रिय वचन नहीं बोल रहे, लेकिन फिर भी रुक्मिणी को बहुत भय हो गया कि ये मेरा त्याग करना चाहते हैं। तो इस तरह से हमें समझना है कि उद्वेग भी पैदा ना हो और अप्रिय भी ना लगे, तो ये कुछ सामान्य सिद्धांत हैं, लेकिन फिर आवश्यकता पड़ने पर कुछ बातें ऐसी बोली जाती हैं जो अप्रिय लगती हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति से बोली जाती हैं जो बहुत गंभीर होता है, बुद्धिमान होता है, और वो उनको अप्रिय लगने पर भी वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ ये जो है मेरे हितकारी है, जैसे कि दवाई कड़वी होती है लेकिन जो बुद्धिमान रोगी होता है तो उसको पी लेता है ना। तो विभीषण भी रावण से कहते हैं सुलभा बहवो राजन सततम प्रिय वादिना अप्रिय पथ्य से वक्ता श्रोता चतुर्लभा, हे राजन ऐसे लोग तो बहुत सुलभ हैं, बहुत मिल जाएंगे, सततम प्रिय वादिना कि हमेशा प्रिय बोले, क्योंकि तो आप राजा हैं तो राजा को प्रिय वचन बोलने वाले हमेशा मिल जाते हैं, खुशामद करने वाले, क्योंकि राजा से तो बहुत लाभ होने वाला है, तो बहुत लोग हैं जो हमेशा प्रिय बोलने वाले होते हैं। अप्रिय सचा पथ्य से वक्ता श्रोता चतुर्लभा, लेकिन अप्रिय हो और हितकारी बात बोलने वाला, पथ्य का मतलब है जो हितकारी, अप्रिय लेकिन हितकारी बात बोलने वाला वक्ता और श्रोता दुर्लभ है, सुनने वाला भी बहुत दुर्लभ है और बोलने वाला भी बहुत दुर्लभ है, जो सुने वो भी बड़ा मुश्किल है, सुनने वाला और बोलने वाला भी बड़ा मुश्किल है। तो ये बात कहकर के भी वो उस बात को जो है वो कुछ है प्रिय बना रहे हैं, इससे जो है कि व्यक्ति तैयार हो जाए तो उसको फिर उतना अप्रिय नहीं लगेगा। जब आप बोल देते हैं कि भाई कुछ अप्रिय समाचार है आपके लिए, तो आप तैयार हो जाते हैं कि कुछ अप्रिय समाचार है, सुनने के लिए तैयार हो, क्या क्या बात है, तो फिर आपको बताया जाता है अप्रिय समाचार है तो आपको फिर उतना अप्रिय नहीं लगता, क्योंकि आप तैयार हो गए पहले से, है ना। और नहीं आप बिल्कुल तैयार नहीं है और बोल दिया और उद्वेग भी पैदा हो जाएगा, एकदम से बोल दिया, है ना। तो ये कला है, ये बोलने की कला है। भगवान गीता में बता रहे हैं तपस्या, तो ये तपस्या जो है ये आपकी जो है ये कला है जो कि आपको सीखना है, आपको जानना है। साधु संघ में जो है आप ये कला सीखते हैं, बिना साधु संघ के आपको ये कला नहीं आप सीख सकते हैं। प्रभुपाद भी जब रासकल बोलते हैं तो रासकल भी बोलते हैं तो इतना मधुर स्वर में बोलते हैं यू रासकल, जब प्रभुपाद बोलते हैं यू रासकल तो वो बड़ा स्वर जो है उनका बड़ा कोमल होता है। प्रभुपाद का जब स्वर है बड़ा कोमल होता है, यू रासकल उसी स्वर में मैंने कठोर स्वर में बोल दिया, शब्द वही है कठोर स्वर में बोल दिया तो वो कितना बुरा लगे, उद्वेग पैदा होगा। जब प्रभुपाद में यू रासकल तो वो जो है मधुर लगता है, कोमल लगता है। तो स्वर भी जो है मतलब आपका उद्वेग पैदा कर सकता है, किस स्वर में आप बोल रहे हैं। तो स्वर से भी जो है बहुत अंतर पड़ता है। वही शब्द बोल रहे हैं लेकिन उस आप कठोर स्वर में बोलते हैं या कोमल स्वर में बोलते हैं उससे बहुत अंतर पड़ता है, जमीन आसमान का या दिन रात का अंतर पड़ता है। तो वाणी की तपस्या में सब बातें हैं, स्वर की भी बहुत आवश्यकता है कि स्वर आप किस स्वर में बोल रहे हैं, उन्हीं शब्दों को बोल रहे हैं किस स्वर में बोल रहे हैं, ठीक है ना। आप शब्दों को रुक रुक करके बोल रहे हैं तो उससे भी फर्क पड़ता है। तो ये सब जो है वाणी की तपस्या के अंदर आ जाता है, ठीक है। और कोई, हाँ जी, आधा, क्योंकि स्त्री से जो है भगवान सन्यासी हैं तो थोड़ा दूरी रखते थे स्त्री, वो एक स्त्री हैं माधवी देवी, तो भगवान सन्यासी हैं और सन्यास के नियमों का बहुत कठोरता से पालन करते हैं, तो वो उनके संगति में वो भी थी माधवी देवी, लेकिन थोड़ा दूरी रखते थे, इसकी आधा बताए, ठीक है। और कोई प्रश्न है, हाँ जी। हाँ, तो ये सब जो है विचार करना होता है, प्रिय हो और हितकारी भी हो, आपको जो भी बोलना है वो हित भी, उसमें हित भी होना चाहिए। तो वाणी की तपस्या में चार चीजें हैं और उनको कोई एक भी चीज को आप छोड़ नहीं सकते, आप प्रिय बोल रहे हैं हितकारी भी होना चाहिए और सत्य भी होना चाहिए। कोई जो है डॉक्टर है, डॉक्टर वैद्य है तो आपको प्रसन्न करने के लिए कहें आप बिल्कुल ठीक हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं, आप कोई बीमारी नहीं है, सत्य नहीं है, नहीं प्रिय है, आपको बड़ा प्रिय लगता है तो आप हमेशा उसी डॉक्टर के पास जाएंगे। तो उद्योग तो नहीं हो रहा है लेकिन सत्य नहीं है, फिर उद्योग भी नहीं हो रहा है, सत्य भी आप बोल रहे हैं लेकिन प्रिय नहीं है, तो वो भी यथासंभव उसको प्रिय बनाइए। आप उसको अप्रिय की सूचना देते हैं कि कुछ अप्रिय बात बोल रहा हूँ, आप क्षमा करना पहले से, तो पहले से माफी मांग लेते हैं, क्षमा करना, तो व्यक्ति जो है पहले से तैयार हो जाता है कि हाँ भाई मुझे क्षमा करना है जो कुछ बोलेंगे, तो फिर आप बोलते हैं, तो वो भी जो है मतलब तरीका है, यथासंभव आपने उसको प्रिय बनाया, ठीक है ना। तो इस तरह से बोलना पड़ता है। और कोई प्रश्न किसी का, आप लोगों की उससे कोई चर्चा है। तो भगवान रामानंद राय से जो कह रहे हैं कि आमी एक बातुल तुम्हें द्वितीय बातुल, तो ये भगवान किस दृष्टि से कह रहे हैं, अपनी दृष्टि से कह रहे हैं या लोगों सामान्य लोगों की दृष्टि से कह रहे हैं, सामान्य लोगों की दृष्टि से कह रहे हैं। तो भगवान सामान्य लोगों की दृष्टि से कह रहे हैं, तो ये भी एक दृष्टि है कि आप क्या कार्य कर रहे हैं, आपका कोई भी कार्य करने का तरीका सही है या इरादा सही है, लेकिन वे लोग ये समझेंगे, वे लोग उल्टा समझेंगे, तो वो भी आपको विचार करना है। तो लोगों की नजरों में मैं भी पागल हूं, तुम भी पागल हो, तो ये बातें जो है इसलिए नहीं बताना, भगवान जो है इसलिए मना कर रहे हैं कि सामान्य लोगों ने नहीं बताना। तो ये कौन सी चर्चा है जिसको ये चैतन्य मना कर रहे हैं, किस प्रकार की चर्चा को मना कर रहे हैं कि नहीं बताना, कौन बताएगा? है राधा कृष्ण के जो संबंध हैं वे बहुत दिव्य हैं, बहुत ऊंचे स्तर के हैं, तो लोगों को नहीं बताना। गीत गोविंद के लिए भी भक्तों ने, ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मना किया था कि मत छापो, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गीत गोविंद को छापने के लिए अपने पिता भक्तों ठाकुर से आज्ञा मांग रहे थे, और उन्होंने जो है प्रेस जो है स्थापित की थी, तो प्रेस में वो किताबें छाप रहे थे। तो भक्तों ठाकुर ने कहा कि अगर छापना है तो केवल एक ही पुस्तक छापो अपने लिए, केवल तुम ही इसको पढ़ने के योग्य हो, छापना तो केवल एक प्रति छापना, एक पुस्तक छापना अपने लिए और किसी को नहीं। तो ये सब बातें हैं जो कि हमें समझ नहीं आते। हाँ जी,
हमारे तुलनीय भक्त हैं, हम इनसे अपने हृदय की इस गुह्य बात को हम कहें, तो उसका पता हम कैसे आकल लगाएं?
भक्त जो है जिस धरातल पर होता है, जिस प्रकार की चर्चा में जो है एक दूसरे से हम समझ सकते हैं और समझा सकते हैं, तो वो समान धरातल पर कहलाते हैं, उसी को प्रीति लक्षण भी कहा जाता है। ददाति प्रति गुह्य, ददाति प्रति गृहणाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति। तो गुह्यम आख्याति जो गुह है, जो छिपाने लायक बातें हैं वो बताता भी और पूछता भी है, तो ये प्रीति लक्षण है। तो बाकी सबसे जो बातें मैं छिपाता हूँ इन आपसे बताता हूँ और आपसे पूछता भी हूँ, जो बातें सब से नहीं पूछता हूँ या सबको नहीं बताता हूँ तो मैं आपसे पूछता हूँ, तो वो प्रीति लक्षण है। तो अपने बराबर धराता भगवान है, श्री चैतन्य भगवान है, लेकिन भक्त के रूप में है, वे जो है अभिनय कर रहे हैं, तो अपने बराबर के धरातल से ही जो है हम वो बातें हम कर सकते हैं, सामान्य लोगों से हमें छिपाना पड़ता है ये सब बातें। तो इस तरह से भगवान जो है ये दिखा रहे हैं कि भक्त को जो है ये बातें अब भक्तों के समाज में हम करते हैं तो वो जो है कुछ भी उसमें दोष नहीं होता है, लेकिन जनता में जब हम करते हैं तो हमें देखना पड़ता है हमें क्या बोलना है, किस समय बोलना है, किससे बोलना है, क्या बोलना है, ना वो सब बातें बतानी पड़ती हैं। प्रबोधानंद सरस्वती ने जो है एक श्लोक लिखा है ना, चैतन्य चंद्रामृत का श्लोक है, तो कहा है कि भाई भौतिकतावादी व्यक्ति के पास जाओ तो पहले उसकी बहुत आप प्रशंसा करो कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत गुणवान हैं सब कुछ, और फिर कहते हैं कि अपना जितना भी कूड़ा करकट अपने दिमाग का है वो निकाल करके चैतन्य की शरण ले लो। तो ये सब आविष्कार करने पड़ते हैं हम लोगों को कि क्या बात बोलने है, किससे क्या बोलना है, जिससे कि वो व्यक्ति भक्ति में आ जाए। धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधिका रमन जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव कृष्ण बलदेव और गौरनिताई की जय हो। हरि बोल।